मेरे आत्मीय मित्रों नमस्कार फ्रेंड्स, आज बुधवार है यानी कि वेडनेसडे है और मुझे विश्वास है कि अब वेडनेसडे की आप थोड़ी सी अधीरता के साथ, अतिरिक्त उत्साह के साथ प्रतीक्षा करते होंगे। और यदि आप ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो इसे कहीं न कहीं मैं अपनी असफलता मानता हूं कि मैं अपनी बातों को इस तरीके से आपके सामने नहीं रख पा रहा हूं कि यह आपको अंदर से अधीर बना दे, प्रतीक्षित बना दे। खैर चलिए, अभी शुरुआत ही हुई है, आगे देखिए शायद यह अवसर आए, ऐसी स्थितियां बने। फ्रेंड्स, आज मैं आप सबसे जो बात करने जा रहा हूं, ध्यान होगा आपको कि पिछले अंक में मैंने आप सबसे एक मास्टर चाबी की बात की थी। तीन तरह की चुनौतियां मैंने बताई थी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की, लेकिन उन तीनों चुनौतियों का जो मुकाबला करने का जो सूत्र है वो एक ही है, जिसे मैंने मास्टर चाबी कहा था। मैंने आप लोगों को कुछ एक्सरसाइज दिए थे कि आप अपने पहले, सबसे पहले तो पढ़ने के ढंग को देखिए, उसका मूल्यांकन कीजिए। और मूल्यांकन आप कैसे करेंगे उसका मैंने तरीका बताया था, आपने किया या नहीं किया दोस्तों मैं नहीं जानता, लेकिन इसको लेकर के मेरे पास मेल्स नहीं आए, एक दो मेल ही आए होंगे कि सर हमने ऐसा किया, बाकी मेल्स नहीं आए। हालांकि मैंने कहा भी नहीं था कि आप सब मेल लिखें, खैर कोई बात नहीं। अगर आप देखिए किसी भी तथ्य का अगर आप पूरा फायदा उठाना चाहते हैं तो तब तक संभव नहीं होता है जब तक कि आप उसे प्रैक्टिकली न लें। जैसे हम प्री के बारे में देखिए इतनी सारी बातें कर रहे हैं, एक एक क्वेश्चन को लेकर के बातें कर रहे हैं, और मैंने महसूस किया है कि जो उसके सभी आयामों को लेकर के चल रहे हैं धीरे धीरे उनकी कैपेसिटी बहुत अच्छी बढ़ रही है। आप भी उनमें से एक होंगे ऐसा मैं मानकर चलता हूं। अगर आप उनमें से एक नहीं है तो आपको उनमें से एक होना चाहिए। तो इसीलिए थोड़े से आप मेरे साथ चलने की कोशिश कीजिए, मैं जो बातें कहता हूं उन्हें अपने ऊपर अप्लाई कीजिए, आपको रिजल्ट मिलेंगे। तो दोस्तों, आज मैं उस मास्टर की के बारे में आपसे बात करने जा रहा हूं, और वो मास्टर की है पढ़ने का ढंग, पढ़ने का ढंग। अगर आपने पढ़ने के ढंग को अपना सही कर लिया तो मान करके चलिए कि आपने इन तीनों चुनौतियों को चुनौती दे दी, अब आपका सफल होना निश्चित है। आगे चलकर के मैं आपको बताऊंगा कि मैं जिस पढ़ने के ढंग की बात कह रहा हूं वो है क्या, मैं बताऊंगा। जैसे देखिए, आप किसी यात्रा पर जाते हैं, राइट, और सिविल सर्विस की तैयारी करना भी एक यात्रा है ना, दो तीन साल की आप यात्रा पर जा रहे हैं। आप कहीं की भी जब जर्नी पर जा रहे होते हैं, और मान लीजिए कि आप एक दो महीने की जर्नी पर जा रहे होते हैं, तो आप सोच समझ कर उसकी तैयारी करते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप जून जुलाई के महीने में केरल की यात्रा पर जा रहे हैं कि अरे बहुत ही ज्यादा वहां तो वृक्ष हैं और समुद्री किनारा है और खूबसूरत सघन क्षेत्र है, तो चलो वहां एंजॉय करने जाते हैं। तो जब आप केरल जाएंगे तो क्या करेंगे, कैसे कपड़े रखेंगे, क्या आप सूट रखेंगे, क्या आप फुल स्वेटर रखेंगे, गर्म कपड़े रखेंगे, नहीं रखेंगे, आप हल्के फुल्के कपड़े रखेंगे, सूती कपड़े रखेंगे, क्योंकि वहां गर्मी पड़ती है, यानी कि वहां का जो मौसम है उसके हिसाब से आप अपनी तैयारी करेंगे। इसका मतलब है कि जो वहां की रिक्वायरमेंट है उस रिक्वायरमेंट को आप फुलफिल करेंगे। अगर इसे आप सिद्धांत में बदल दें तो इसका मतलब है कि केरल की जो रिक्वायरमेंट होगी आप उस रिक्वायरमेंट को ध्यान में रख करके अपने यात्रा की तैयारी करेंगे कि मुझे अपने सूट केस में क्या क्या चीजें रखनी है, राइट। तो दोस्तों, आपको बहुत अच्छे से मालूम होना चाहिए कि जो सिविल सर्विस है उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, और इनके रिक्वायरमेंट्स के बारे में मैंने आप लोगों को से काफी बातें की हैं कि इसकी रिक्वायरमेंट क्या होती है। तो सीधी सी बात है कि अगर आपके दिमाग में जो सिविल सर्विस की रिक्वायरमेंट है या यूपीएससी कह लीजिए उसकी रिक्वायरमेंट है, ये साफ है, क्लियर है, तो अब आपको कोशिश ये करनी है कि मैं इसे कैसे फुलफिल करूं, कैसे मैं उनकी उम्मीदों पर अपने आप को खरा उतार सकूं। बहुत स्पष्ट है ये, इसमें कहीं कोई संदेह की बात नहीं है, और आपको अपनी तरफ से सोचने की जरूरत भी नहीं है, कोई गुंजाइश ही नहीं है। यह ब्रह्म सत्य की तरह है कि अगर आपको यूपीएससी क्वालिफाई करना है तो आपको मालूम होना चाहिए कि यूपीएससी की रिक्वायरमेंट क्या क्या है, और आपके पास इसके सिवाय कोई विकल्प नहीं है कि आप उनकी रिक्वायरमेंट्स को पूरी करें। और जो स्टूडेंट उनकी रिक्वायरमेंट के पैरामीटर्स पर, कसौटियों पर जितना खरा उतरता है, सीधी सी बात है कि वो उसको उतनी हाईएस्ट रैंकिंग दे देते हैं, जो खरे नहीं उतरते हैं उन्हें वह रिजेक्ट कर देता है, सिंपल सी बात है। तो दोस्तों, ये जो खरा उतरने का जो औजार है कि आप कैसे खरा उतरेंगे, उसका एकमात्र औजार जो फिलहाल जो मैं जानता हूं और जो मेरे पास है वह है पढ़ने का ढंग। अगर आपने अपने पढ़ने के ढंग को ठीक कर लिया, उसकी जरूरत को पूरा करने के हिसाब से बना लिया, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में सफल होने से आपको कोई नहीं रोक सकता। हालांकि मैंने कहा है कि यह बहुत कठिन एग्जामिनेशन है भी, लेकिन कभी कभी मुझे एक बहुत विचित्र सी बात लगती है कि शायद जो एग्जामिनेशन जितना कठिन होता है वह उतना सरल भी होता है। सरल इस मायने में होता है कि यदि आप उस कठिनता को सॉल्व करने का सूत्र समझ लेते हैं तो वो सबसे ज्यादा विश्वसनीय हो जाता है आपके लिए कि नहीं नहीं मैं तो इसे कर लूंगा फिर। लेकिन हम उस सूत्र को समझने की कोशिश नहीं करते। हम जो पुराने सूत्र को जान रहे होते हैं, जिसके हम अभ्यस्त हो गए हैं, आदि हो गए, हैबिचुएट हो गए हैं, हम उसी को रिपीट करते रहते हैं और हमें ऐसा लगता है कि चूंकि यही तो है, पढ़ना ही तो है, सिलेबस है, किताबें हैं, हम पढ़ लेंगे, हम रट लेंगे, लिख करके आ जाएंगे, बात बन जाएगी, क्योंकि अभी तक बात बनती रही है। और मुझे लगता है कि यही वह सबसे बड़ा गड्ढा है जिसे आप ब्लैक होल कह लीजिए, जहां हम समा जाते हैं, निकल नहीं पाते। तो दोस्तों, सबसे बड़ी बात है कि आप अपने आप को इस ब्लैक होल से निकालते कैसे हैं। अब मैं आपको आज एक बात बताने जा रहा हूं कि जब मैं कह रहा हूं पढ़ने का ढंग, तो उसका मूल मंत्र क्या है। मूल मंत्र, आज मैं सिर्फ मूल मंत्र के बारे में बात करूंगा, इतना वक्त नहीं है कि मैं बहुत डिटेल में इस पर जा सकूं। एक बात आपको अपने दिमाग में स्थापित कर लेनी चाहिए बिना किसी संदेह के, बिना किसी संदेह के। और वह बात यह है कि आप चाहे किसी भी विषय को क्यों न पढ़ रहे हो, देखिए आप केमिस्ट्री पढ़ते हैं, फिजिक्स पढ़ते हैं, बॉटनी, जूलॉजी, ये जितने भी साइंस के सब्जेक्ट पढ़ते हैं, इन्हें पढ़ते हैं और इन्हें कहते भी हैं कि मैं साइंस के सब्जेक्ट पढ़ रहा हूं। लेकिन फिर जब आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ने लगते हैं, आप ज्योग्राफी पढ़ने लगते हैं, आप इकोनॉमिक्स पढ़ने लगते हैं, हालांकि कुछ यूनिवर्सिटीज में, फॉरेन कंट्रीज में तो ऐसा है, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स को साइंस में मान लिया गया है। आप जब सोशियोलॉजी और हिस्ट्री पढ़ने लगते हैं, इस तरह के ह्यूमैनिटीज के जब सब्जेक्ट पढ़ने लगते हैं, चाहे वो ऑप्शनल के हों या जनरल स्टडीज के ही क्यों ना हो, तब फिर हम सबके दिमाग में, आपके नहीं, हम सबके दिमाग में ये आता है कि हम ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, यानी आर्ट्स के सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। फैकल्टी हमने इसी तरह से बांट दी है। इसका मतलब यह हुआ कि साइंस के सब्जेक्ट अलग हैं और आर्ट्स के सब्जेक्ट अलग हैं। अगर सब्जेक्ट अलग हैं तो स्वाभाविक है कि साइंस के विषय की तैयारी अलग तरीके से होगी और आर्ट्स के विषय की तैयारी अलग तरीके से होगी। और जब हम ग्रेजुएशन कर रहे होते हैं तो उस समय हम देखते हैं कि हमारे साथ के जो साइंस के स्टूडेंट हैं वो पढ़ने के बाद बकायदे लैब में जाते हैं और जो कुछ भी उन्होंने पढ़ा हुआ होता है उसका वो प्रयोग करते हैं। यानी कि पहले तो उन्होंने थ्योरी पढ़ी और थ्योरी पढ़ने के बाद उसे वो प्रैक्टिकल में कन्वर्ट करते हैं, वहां जाकर के सीखते हैं। ह्यूमैनिटीज के साथ ऐसा कुछ नहीं है, हमें इसकी जरूरत ही नहीं पड़ती है और न बताया जाता है। तो फिर हमारे दिमाग में यह बात एकदम बैठ चुकी होती है, जबरदस्त रूप से कुंडली मार करके बैठ गई है कि नहीं, आर्ट्स के जो सब्जेक्ट हैं वो रटने के सब्जेक्ट होते हैं, आप उन्हें रट लीजिए, बात बन जाएगी, आपकी तैयारी हो जाएगी। और हम अभी तक ऐसा करते रहे हैं और रिजल्ट भी मिलते रहे हैं। जो सबसे पहली बात है वो ये कि आपको अपनी इस धारणा को तोड़ना होगा, ब्रेक करना होगा, इसके टुकड़े टुकड़े करने होंगे, इसे पाउडर बना करके फेंक देना होगा। दोस्तों, ये मैं केवल अपनी बात कह रहा हूं। अगर आप मेरे स्टूडेंट हैं और आप मुझे सुन रहे हैं तो मैं खासकर एक गाइड होने के नाते ये बात कह रहा हूं। अगर दूसरे अपनी बात कह रहे हैं, उनकी बात मेरे बात से मेल नहीं खा रही है, तो मैं उन्हें कंट्राडिक्ट करने नहीं जा रहा हूं। मैं कंट्राडिक्ट नहीं कर रहा हूं, ना मैं उन्हें गलत ठहरा रहा हूं, मैं केवल अपनी बात कह रहा हूं। प्लीज इस बात का आप ध्यान रखें। आपको अपने दिमाग में ये बैठाना पड़ेगा कि नहीं, जो आर्ट्स के भी सब्जेक्ट है, चाहे वो सोशियोलॉजी ही क्यों ना हो, सोशियोलॉजी में बात इसलिए कह रहा हूं कि ये लोगों को बहुत सरल लगता है और है भी, वो भी एक साइंस है। कैसे साइंस है? देखिए, अभी मैंने जिस शब्द का इस्तेमाल किया, सोशियोलॉजी, लॉजी, बायोलॉजी, बायो का मतलब है जीव, जैविक, लॉजी शास्त्र, जीव शास्त्र, और मैंने अभी कहा सोशियोलॉजी। सोशियो का मतलब हो गया समाज, और लॉजी का मतलब हो गया शास्त्र। तो ये दोनों में शास्त्र क्यों है, दोनों में लॉजी क्यों है? सोशियो आर्ट कह देते इसको, या कुछ और कह देते, लॉजी कहने की क्या जरूरत थी, या सोशल साइंस कहने की क्या जरूरत थी, या पॉलिटिकल साइंस कहने की क्या जरूरत थी, उसको सीधे सीधे कुछ और कह देते। लेकिन आप देखते इनमें साइंस लगा हुआ है, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, तो क्या ऐसे ही कह दिया गया? इसके पीछे कोई तो रीजन होगा, और है, रीजन है। ऐसे नहीं कह दिया गया कि किसी के मन में आया और उसने घोषणा कर दी। दोस्तों, इसके पीछे रीजन है, और बहुत सोचा समझा कारण है, और वो कारण एकमात्र ये है कि ये जितने भी विषय हैं, ज्ञान का जो भी क्षेत्र है, मान करके चलिए कि वो विज्ञान का क्षेत्र है, दैट्स ऑल। यानी कि आपको आर्ट्स के सब्जेक्ट को भी इस तरीके से पढ़ना है एज इफ कि आप साइंस के सब्जेक्ट पढ़ रहे हो। ऐसा किया जा सकता है, ऐसा किया जाना चाहिए, और यह बात मैं पूरे गर्व के साथ कह सकता हूं, आत्मविश्वास के साथ कह सकता हूं कि मैंने ऑनलाइन क्लासेस के लिए जो लेक्चर्स रिकॉर्ड किए हैं वो इसी पैटर्न पर किए, इसीलिए मैं यह बात ज्यादा और भी अधिक दावे के साथ कहने की स्थिति में हूं। तो दोस्तों, आज मुख्य विषय के बारे में बस इतना ही, इस पर अभी और बातें करेंगे, ढेर सारी बातें करेंगे। न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स आप सबको प्रोवाइड कर रहा हूं, देख लेंगे। ईमेल लिखने वाले मित्रों को धन्यवाद देता हूं, और इन्हीं में से कुछ दोस्तों के नाम हैं, आकाश देवांगन, शालिनी पाठक ग्वालियर मध्य प्रदेश से, गोपाल कुमार न्यू दिल्ली से, दिव्या केसरवानी नैनी प्रयागराज से, और अंजलि सोनी, आप सबका बहुत बहुत आभार। और खासकर गोपाल कुमार हमारे फिफ्थ बैच के स्टूडेंट रहे हैं, उन्होंने सूचित किया है कि बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्जामिनेशन में उनका फाइनल सिलेक्शन हुआ है। तो गोपाल, इसके लिए मैं तुम्हारे बैच के सभी मित्रों की ओर से, एकेडमी की अपनी पूरी टीम की ओर से, मैडम प्रीति अग्रवाल की ओर से, और अपनी ओर से बहुत बहुत बधाइयां देता हूं, और भविष्य की बहुत ही बेहतर सफलताओं के लिए शुभकामनाएं भी देता हूं। और इन्हीं शब्दों के साथ फ्रेंड्स, अब आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को यहीं समाप्त करता हूं। नमस्कार।